तो मैना मंत्री कहने लगी कि भाई भरतरी तेरे पास इसी दवाई हो के तू अमर हो जाएगा, आदमी उसके खाए थे तो तू न्यू करे, मेरा बेटा है गोपीचंद उसने अमर करा दे। तेने बोला ठीक से बेबे, मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूं, अगर जो कोई ऐसी दवाई होगी कमर हो जाएगा तो मैं जाकर बात करूंगा। अब भरतरी तो चला जाता है और एक दिन गोपीचंद अपना चौकी बिछा कर नहाने खातिर तैयार होया, कपड़े काट के बैठा और ऊपर छज्जे पर मैनावंती ने देखा तो गोपीचंद का शरीर देख के सोने के तरह शरीर चमक रहा था उसका, देख कर उस मन में सोचने लगी कि इसके बाप का भी ऐसा ही शरीर था और एक दिन वो माटी मिल गया और ये भी माटी में मिल जाएगा। तो उसकी आंखों से ये बात सोच के बूंद गोपीचंद की कड़ पर पड़ी, आंखों से आंसू लिकड़ के तो देख के आंसू ने और चौगड़ दिन लखा के और गोपीचंद के कहने लगे एक बात के द्वारा,
गोपी चंद होया त्यार नान ने जो की तुरत बचाई, गटा बादड़ी ना अंबर में या बूंद कड़े ते आई, गोपी चंद होया अंबर में बूंद कड़ी ते आई, गोपीचंद होया छोटी तरत बचाई, अंबर देख लिया कुछ नहीं समझ में आया, डन बादल बरसात कर तू है हे ईश्वर तेरी माया, है एकदम किस्सा अचंबा हो गया है कापण लागी काया, बंद करया असनान उठ के चारों तरफ लखाया, बंद करया असनान उठ के चारों तरफ लखाया, वही छज्जे ऊपर नजर गई जड़ रोवे जननी माई, बादली ना अंबर में बूंद कड़ी ते आई, गोपी चंद होया जड़ में जाके पूछने लग्या, खोल बता मसारी मुँह ते बोले लकड़ता कोना, किसने बोली मारी है कौन सी रानी मेरी तेरे पे साच बता मैं तारी, एक मिनट की देर नहीं करूं धड़ते गर्दन न्यारी एक मिनट की देर करुणा गोपी चंदी लाडला बेतारी दिया गोपी चंदी लाडला बेटा पाकर तेरी सोनाई गड्डा बादरी ना अंबर में खड़े ते आई गोपी चंद होया चौकी अंबर में खड़े ते आई
क्या के मेख के आंसू मेरी छाती के मगास बोरी बली करने आले का पण में सर के नास उस मानस का के जीना जिसकी दुखी मास
जीवन न चाहे जिए पर जीवन का किरास जीवन न चाहे जिए पर जीवन का किरास
हेरी होया हाल दे हाल तेरा तू दी किसने आन सतारी गटा बादली बूंद खड़े से आई गोपी चंद होया जल के सी लगी चढ़ी से दौर जाके बुझन लग्या कि गहरी व्यक्त पड़ी से मेरी कमर में बूंद आन के लागी जननी मत खड़ी से तेरे मुंह ते बोली लकड़ता कोन्या तेरी कोई कोई चीज हरी से मुंह ते बोल
लकड़ता कोन्या तेरी कोई चीज हरी से
हाँ जगन्नाथ के गोपी तन मेरे
अंबर में बूंद खड़ी ते आई।